नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 35। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। यत्रेडयन्ते कथा मृष्टा तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेगो यत्र कश्चन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, वे एक दूसरे से ना तो बैर करते हैं, ना किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। तात्पर्य, वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित, और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा समुद्विग्न धियान असद ग्रहा। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है, वह सदैव कुंठा में मग्न रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा श्री भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं, तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु की विधि है, जिससे भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगते हैं। शृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन भागवत 1:2:17। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण भामरामृत संघ द्वारा चलाया गया संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की सृष्टि करने के लिए है, जहां कोई कुंठा नहीं है। इसकी विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाश्विक विद्वेष बना रहता है। फलतः प्रचेताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया और इसे ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर माना। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और ये प्रचेताओं के द्वारा बोला जा रहा है। भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान ने उनको दर्शन दिया है, क्योंकि उनको महादेव शिवजी की कृपा प्राप्त हुई है और शिवजी ने उनको जो मंत्र दिया जिसके द्वारा वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से शिवजी जो हैं उनके गुरु हुए, जिनसे भी हम मंत्र या प्रार्थनाएं प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हमारे गुरु बन जाते हैं। और महादेव की कृपा से, शिवजी की कृपा से प्रचेताओं को दर्शन प्राप्त हुआ भगवान का। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रचेता जितने भी हैं वो सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और इससे पहले का श्लोक भी बहुत सुंदर है, तुल्याम लवेणापि न स्वर्गम नापो नर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषा। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने सर्वलोक जाने अथवा ब्रह्म तेज में मिलने का सुख तुच्छ है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्त शुद्ध भक्तों की संगति है। लव मात्र साधु संगी सर्व सिद्धि होय, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो इस तरह सिद्धि के पथ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जब हमें उच्च कोटि वैष्णवों का सानिध्य संग प्राप्त होता है। और ऐसे सानिध्य में जब रहते हैं और कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग हर प्रकार के उद्विग्न से, उद्वेग से छुटकारा पाते हैं, भय से छुटकारा पाते हैं। जैसे यहां लिखा उद्वेग, कई प्रकार के वेग हैं संसार में, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये सारे वेग ही हैं। और ये वेग हमें भयभीत बनाते रहते हैं, हमें चिंता में डालते हैं, और इसीलिए जगत का नाम है कुंठा, कुंठा का जगत है ये, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कि अभी आवाज करता हुआ गया वायु यहां कुंठा पैदा करने के लिए, हर समय यहां पर भय बना रहता है। पदम पदम विपदम नादेशां, कष्ट से भरा है ये संसार। और ऐसे संसार में एक ही उपाय है इस भय से बचने का, एक ही उपाय है इस कलमश से बचने का, वो है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा वास्तव में भवौषधि है। निवृत्त तर्शेर उपगीयमानात भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान ब्रजेत बिना पशुघ्नात। निवृत्त तर्शे, निवृत्त हो चुकी है जिनकी तृष्णा, वो तो निरंतर गुणगान करते हैं। जिस तरह से यहाँ प्रचेतागण जो है गुणगान कर रहे हैं भगवान का, भगवान का सुदर्शन प्राप्त करके उनका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जिनको अभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, वो अर्चे वगैरह के समक्ष बैठकर भगवान का निरंतर गुणगान कर सकते हैं। और अगर अर्चे वगैरह के समक्ष नहीं भी है, तभी गुणगान किया जा सकता है प्रचार के माध्यम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करे चित, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हमसा निर्मन्ति उशिक्षया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत ये कह रहा है कि जो शब्द भगवान का गुणगान नहीं करते, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र होता है, भगवान के गुणानुवाद से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र होता है, जैसे हम यहां पर कृष्ण कथा करते हैं या हरिनाम संकीर्तन होता है, तो पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाता है, पवित्र बनने लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संत लोग, मानस लोग जो हैं, ऐसे स्थान को कौओं का तीर्थ स्थान बताते हैं, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा। और इस कारण से ये संत लोग, ये साधुगण इस पृथ्वी में आकर, इस पृथ्वी में रहकर कोई आनंद की अनुभूति नहीं करते, उनको ये संसार बिल्कुल नीरस और फीका लगता है, संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथामृत का रसपान कर रहे हैं। इसलिए भगवान भी गीता में क्या कर रहे हैं, भगवान गीता में बता रहे हैं कि जब तक हमें ऊंचे रस का आस्वादन नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग एक देहात्मक बुद्धि में बने रहेंगे, है कि नहीं। कौन सा वो श्लोक है बताइए, विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपसुकोंत्या परम दुष्ट्वा निवर्तते। तो परम दुष्ट्वा निवर्तते जब हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप संसार के नहीं रह जाते हैं, संपूर्ण रूप से आप अपना सर्वस्व जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, मन वाणी और शरीर से। इस देह में रहते हुए भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग कृष्ण कथा का पूरा लाभ उठाएं। कृष्ण कथा ही एकमात्र उपाय है हर प्रकार के कुंठा से बचने के लिए, हर प्रकार के कर्मश से बचने के लिए। नहीं तो ये शरीर बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। ये इंद्रियां सर्प के समान बताई गई हैं, दुर्दांत इंद्र काल सर्प परटली प्रोत्खास दम शायते, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इन इंद्रियों में जहर भरा हुआ है, लेकिन जहर को निकाला जाए मंत्र औषधि के द्वारा निकाला जा सकता है। मंत्र औषधि, अगर मंत्र और औषधि आपके पास है, तो इंद्रियों से ये जहर आप निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका बड़ा सरल है, बहुत ही सुलभ है, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। नहीं तो क्या बता रहे हैं, सोनक ऋषि बता रहे हैं सूत गोस्वामी को, नैमिषारण्य में श्री सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए सोनक ऋषि कह रहे हैं, बिले बटूर क्रम विक्रमाण ये न श्रणमता कर्ण पुटे नरस्य जीवा सती दारुद्र केव सूत नाचो उपगायती उर्गाय गाता। बहुत सुंदर श्लोक है, बोलते हैं जिन्होंने अभी तक भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्यकलापों को नहीं सुना है और अभी तक उनका गुणगान नहीं किया है, उनका कीर्तन नहीं किया है, जो कि वास्तव में गाने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, तो ऐसे लोगों के कर्ण जो हैं वो सर्प के बिल के समान हैं, सर्प के बिल के समान हैं। वैसे सर्प अपना बिल नहीं बनाता है, बिल बनाता है चूहा, और सर्प आके उसका आनंद लेता है कि नहीं। सर्प और चूहा जो है आपस में मित्र नहीं बन पाते कभी। एक बार फंस गए एक ही टोकरी में, तो सर्प ने सोचा कि कैसे निकाला जाए, कैसे निकला जाए, बाहर कैसे निकला जाए। तो एक ही उपाय है, चूहा कुतर सकता है इस टोकरी को। तो चूहे को बोला कि तुम कुतर दो, एक साथ निकल जाएंगे, है कि नहीं। मैं जानता हूं कि हम दूसरे एक दूसरे से बैर करते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग मित्रता कर ही सकते हैं ना बाहर निकलने के लिए। तो बोलते हाँ ये विचार तो बड़ा अच्छा है। तो चूहा कुतरने लगा और जैसे ही स्थान प्राप्त हुआ तो फिर सांप निकल गया चूहे को। तो ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है, स्वार्थ का संसार है ये। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ का जीवन बिता रहा है, एक दूसरे को दबोचने में और नोचने में लगे हुए संसार में लोग। जैसे कि चील होता है, ऊंचा उड़ता है, जैसे ही वो देखता है उसका भोजन तैयार है, बड़ी ऊंचाई से उसको नजर आता है और बड़ी तेजी से नीचे जाता है। और ऐसे लोगों की जीवा जो है, ऐसे लोगों की जीवा जो है किस प्रकार से है, वो मेंढक के समान है। मेंढक जो है बरसात में टर-टर करता है, उसकी आवाज मधुर नहीं होती, लेकिन फिर से जो है सांप आ जाता है। सांप का भोजन है, सर्प का भोजन है मेंढक, चूहा ये सब खाता है। सांप बड़ा जहरीला होता है और द्वेष से भरा होता है। श्रील प्रभुपाद मायापुर में जहां पर चैतन्य मठ है, वहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर का जहां पर वो है आश्रम है, जहां पर निवास स्थान है, तो प्रभुपाद नीचे जो है कपड़ा धो रहे थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने देखा, एक सर्प देखा, और जैसे ही उन्होंने सर्प देखा उन्होंने मारो इसको, ब्रह्मचारी को बोला। तो ब्रह्मचारी ने लाठी उठाई और मार दिया, एकदम फिनिश, खलास, छुट्टी हो गई सर्प की। तो प्रभुपाद ने सोचा अरे वैश्य तो बड़े कृपालु होते हैं, उनके हृदय में तो जीवात्माओं के प्रति करुणा होती है, लेकिन ये क्या लाठी से मरवा दिया। तो चिंतित हो गए श्रील प्रभुपाद, और श्रीमद भागवत का जब अध्ययन किया सातवें स्कंध में पहुंचे, मोदेत सर्प वृश्चिक हत्या। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि मोदेत कौन लोग, जो साधु संत हैं, जो साधु संत हैं, मोदेत साधु रपी सर्प वृश्चिक हत्या। ये जो साधु लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्या देखकर, जब सांप को मारा जाता है, क्योंकि सांप बड़ा जहरीला होता है, द्वेष भरा होता है उसके अंदर। तो जब उसको मारा जाता है तो संत लोग साधु लोग बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे सर्प को मारने में किसी प्रकार से अपराध नहीं लगता। तो कृष्ण कथा का लाभ क्या है, तो कृष्ण कथा का लाभ यह है कि जहर हमारे इंद्रियों से निकल जाता है। हरदास ठाकुर के इंद्रियों में कोई जहर नहीं था, इसलिए वैश्य जब आए और पूरा प्रयास किया उसने हरदास ठाकुर नामाचार्य हरदास ठाकुर के तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन नामाचार्य हरदास ठाकुर पूर्ण रूपेण हरिनाम का आस्वादन कर रहे थे। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतने मग्न थे, महामग्न चित्ता, तो वीर गायन महामग्न चित्ता। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं मैं तो पूर्ण रूप से मग्न हूं मेरा चित्त तो आपके चरणों में लग चुका है, आपके नाम में, आपके रूप में, आपके गुणों में, आपके लीलाओं में मेरा चित्त लगा हुआ है, अब इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। कौन वैश्या खड़ी है, साइड में हो जाओ, मेरी संख्या भी पूरी नहीं हुई है, कल आना सुबह तुम। फिर अगले दिन सुबह वो आई, फिर से उसने अपना अंग प्रदर्शन किया, तो हरिदास ठाकुर ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनते गए। और इस तरह से समय बीतता गया। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं क्या करूं, मेरी अभी संख्या पूरी नहीं हुई है। और तीसरे दिन हरिदास ठाकुर ने कहा कि इस महीने मेरा 1 करोड़ नाम पूरा होने वाला है, तो आप कुछ समय के लिए रुक जाओ, फिर उसके बाद हम भरपूर आनंद लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्या हुआ, वैश्या के हृदय में परिवर्तन आ गया। द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। जब शुद्ध भक्तों से हम हरि नाम सुनते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, हृदय में परिवर्तन आता है। जब कृष्ण कथा हम सुनते हैं शुद्ध भक्तों से तो हृदय में क्रांति आती है कि नहीं? कौन बोल रहा है ये? आप देखिए श्रीमद् भागवत बोल रहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावु कहा। भुवि भावु का रसिक जन जो है बड़ा आस्वादन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, रस टपका रहे हैं, उनके जीवा से मुख से लार टपक रही है कृष्ण कथा की। और कृष्ण कथा जैसे ही वो बोलने लगते हैं उसकी तरंगे जो है श्रोताओं के करण के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर जाती है। हृत करण रसायन कथा सताम प्रसंगा मम वीर संबितो भवंति हृत करण रसायन कथा तज्जोशनादाशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। श्रद्धा के स्तर पर जो लोग होते हैं, उस श्रद्धा के स्तर पर लोग होते हैं वो साधु संग करने आते हैं, जब उनको शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनने का लाभ मिलता है तो क्या होता है, हृत करण रसायन कथा, और रसायन का कार्य करती है कृष्ण कथा, हृदय में क्रांति आती है, अनर्थों की निवृत्ति होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, नैष्ठिकी भक्ति फिर प्राप्त होती है। तो निष्ठा के स्तर पर पहुंचने में बहुत समय लगता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, गुरु की सेवा में अति यत्न करना पड़ता है, तब जाके कोई निष्ठा के स्तर पर पहुंच सकता है। निष्ठा का मतलब क्या है, निष्ठा यानी कि जो निरंतर स्थिर रहता है भजन क्रिया में, उस भक्त को निष्ठा के स्तर पर बताया गया। निरंतर जो स्थिर रहता है भजन क्रिया में, गुरु की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, जो निरंतर स्थिर रहता है तो निश्चित रूप से क्या होता है, वो निश्चित रूप से वो निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाता है। और निष्ठा के स्तर से जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो पूरा लाभ उठाता है, और निरंतर वो क्या करता है, कीर्तन करता है। कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन तो माम यतंतश्च धृढ़ाव्रता, यानी कि महात्मा लोग क्या करते हैं, हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा मिस्टर पीएल सेठी ने बंबई में, उन्होंने कहा कि आप तो लेबर से मिलते हैं, मैनेजमेंट में बिजी रहते हैं और इधर उधर आप प्रचार में लगे रहते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं को झेलते हैं और हल करते हैं, आपको तो हमने कीर्तन करते हुए नहीं देखा हमेशा। प्रभुपाद ने कहा अपने कान को लगाओ मेरे पीठ में और सुनो। तो मिस्टर पेल सेठी ने प्रभुपाद जी के पीठ पे कान लगाया और क्या सुना उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ, उनको डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से चेक किया उनके हार्ट को, सामान्यतः आवाज आती है ढप 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 की आवाज आती है। तो डॉक्टर ने अपने कर्णों से क्या सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही शील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्त नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुराग जनानुगामी कालम नये अखिलम इति उपदेश सारम। यही सारे उपदेशों का सार है, यही उपदेशामृत है श्रील रूप गोस्वामी ने जो दिया है। 11 श्लोक दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जो इन 11 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेगा, निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगा, गारंटीड है। और कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उपदेशामृत के 11 श्लोक अपने जीवन में उतार लीजिए, बहुत मुश्किल है। और सारे उपदेशों का सार क्या है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं 24 घंटे श्रवण कीर्तन करें, स्मरण करें भगवान के पवित्र नामों का, उनके दिव्य रूप का, उनके गुणों का, उनके नित्य लीलाओं का, और अपने इस प्रकार जीवा को अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं, और इस प्रकार क्या करें, ब्रज में वास करें। तो बोलेगा कि फिर हम सब ब्रज में जाना चाहिए, हम सबको तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी। लोग ब्रज छोड़ के जाते नहीं हैं और हम दिल्ली छोड़ के जाते नहीं हैं ब्रज में, है कि नहीं, जो वास्तव में ब्रजवासी हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सुंदर में बताया है कि अगर कोई शारीरिक रूप से अगर ब्रज में नहीं रह सकता है तो उसको मानसिक रूप में ब्रज में रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा कि जहां आप हैं महाप्रभु वही है वृंदावन, मोर मन वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन है। तो उस मन को वृंदावन बनाए, इस मन को वृंदावन बनाना ये बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रज में जाकर अगर दिल्ली को अगर हम वृंदावन बनाएंगे तो ठीक नहीं है। तो इसलिए यहां और बताया जा रहा है इस प्रकार क्या करना चाहिए, और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं और भगवान के नित्य परिकर हैं, उनके अनुगत्य होकर उनके अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भक्त जो हैं वो क्या हैं, पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में मग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तब हम लोग भक्ति में विकास कर सकते हैं। भक्ति में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं प्राप्त होगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह संभव है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने इसी उपदेशामृत में बताया है कि किस भक्ति भक्तों का संग करना चाहिए, कृष्णेति यस कीर्तम मनसा ध्रियेत, मन से आदर करो जिसने कृष्ण का नाम लिया है, दीक्षास्ति चेत प्रणत भी भजंतम ईशम, और जिसकी दीक्षा हो गई, आध्यात्मिक दीक्षा हो गई है, अर्च वगैरह की सेवा में लगा हुआ है, उसको दंडवत करो, उसको देखते ही शुशुष्या भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम ईप्सिता संगम लब्ध्या, जिसका हृदय अन्यों के निंदा से रहित है और भगवान की सेवा में, भगवत सेवा में तत्पर है, भजन में विज्ञ है, ऐसे भक्तों का संग करो तब भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। सबका संग करने से भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाएंगे, असंभव है ये भक्ति में आगे बढ़ना। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि किसका हम संग कर रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, क्योंकि ऐसे भक्त जो है क्या करते हैं, नमस्संतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तस्त दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, ध्रुव महाराज की तरह बिल्कुल दृढ़ निश्चित होकर क्या करते हैं, वो श्रवण कीर्तन करते हैं, साधना में परिपक्व रहते हैं, प्रातःकाल ब्रह्मवृत में उड़ते हैं, मंगल आरती में भाग लेते हैं, अपनी साधना को अच्छी तरह से करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, और उसके बाद फिर गुरु की सेवा में लग जाते हैं व्यवहारिक रूप से। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्ति मार्ग इतनी सस्ती नहीं है, कई प्रकार की दशाएं होती हैं इसमें। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, और साथ में प्रभुपाद ने उपदेशामृत के तात्पर्य में बताया है कि कई दशाएं, ठाकुर भक्तिनोद ने भी जैव धर्म में बताया है, ये दशाएं शुरू होती हैं श्रवण दशा प्रारंभिक अवस्था, यानी कि श्रवण दशा हम सब की श्रवण दशा, हम भी श्रवण दशा में हैं, लेकिन हम श्रवण दशा से जब लोभ की अवस्था में पहुंच जाते हैं, रुचि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो निष्ठा के स्तर पर निष्ठा के बाद आता है, तो तब भी एक श्रवण दशा जागृत होती है, उस दशा को भी श्रवण दशा कहा जाता है, और वहां से राग मार्ग शुरू होता है। राग मार्ग की साधना लोभ की अवस्था से शुरू होती है। कृष्ण भक्ति रस भाविताम अति क्रियताम यत्कुतो भिलवत्य लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। लाखों करोड़ों जन्म की सुकृति से भी प्राप्त नहीं होगा ये कृष्ण भक्ति रस, इसके लिए लौल्यम ही एक मूल्य है, इसको कहते हैं श्रवण दशा। और श्रवण दशा के बाद आती है वर्ण दशा। वर्ण दशा में आसक्ति के स्तर पर वर्ण दशा प्राप्त होती है, और इस प्रकार से साधक आगे जब बढ़ता है तो फिर वो भाव आपन दशा में पहुंचता है, यानी कि वो सिद्ध देह की तैयारी करता है, भाव की दशा में सिद्ध देह प्राप्त हो जाता है, आपका स्वरूप जागृत हो जाता है, और संपत्ति फिर प्राप्त होती है, यानी कि इस देह का परित्याग करने के बाद सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के परित्याग करने पर क्या करते हैं हम लोग, नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, इसको कहते हैं संपत्ति पूर्णतम अवस्था। तो इन सभी अवस्थाओं से गुजरना होगा, इसलिए ये भजन का मार्ग बहुत ही क्या है, कठिन है। किन लोगों के लिए, जो अभी बद अवस्था में, इसलिए जो बद अवस्था में है उनके लिए वैदिक साधन भक्ति का मार्ग दिया गया है, क्योंकि बद अवस्था में इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, इस मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। श्रील जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा है, जब तक हमारा मन स्फटिक के समान नहीं हो जाता, स्फटिक के समान शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम लोग राग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई बोलेगा, अरे पहले मन को पवित्र करना है फिर राग मार्ग में, हां ऐसा ही है, क्योंकि चेतने महावर की शिक्षा ये है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम शैया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये है वास्तव में क्या, पहला भक्ति का पहला अंग श्रद्धा। श्रद्धा तो श्रद्धा के स्तर पर हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हैं, इस तरह से हमारा मन निर्मल होता है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश्यम इहाजनी नानुराग। कि आपने सारी शक्ति आपने नामों में डाल दी है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो मेरा, मेरा कोई अनुराग ही नहीं है इस हरि नाम में, हरि नाम लेता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, लय की अवस्था में पहुंच जाता हूं, क्योंकि मेरा मन जो है भी कलमश से भरा हुआ है, हरि नाम के माध्यम से हमें इसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये हरि नाम ही साधन है और हरि नाम ही साध्य है, हरि नाम चिंतामणि में भक्तों ठाकुर बता रहे हैं यही साधन है और यही साध्य है। तो सबसे पहले इसको साधन बनाना है, और साधन बनाने में क्या होता है, कई प्रकार की कठिनाई आती है, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी से उपदेशामृत बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्ति अविद्या पितोप्तप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तद्गत मूल हंत्री। भगवान का पवित्र नाम चरित्र, भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्यकलाप, ये सब दिव्य है, किस प्रकार है, मिश्री के समान है, मिश्री के समान। जैसे यहां पर एक श्लोक में शब्द आया है, क्या है, मृष्टा, मृष्टा शुद्ध, मिश्री के समान है भगवान के पवित्र नाम। लेकिन जिसकी जीवा अविद्या, अविद्या के रोग से भरा है जिसकी जीवा, अविद्या क्या है, इसको पीलिया का रोग हो जाए तो मिश्री भी खाएगा तो तो उसको क्या लगेगा, फीका लगेगा। लेकिन अद्भुत बात क्या है, कोई इन पवित्र नामों का नियमित रूप से प्रत्येक दिन उच्चारण करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा आकर्षण इस पवित्र नाम के प्रति बढ़ेगा और ये बीमारी दूर होगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति इसको कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति। तो इस प्रकार हम लोग अनर्थों से छुटकारा पा पाएंगे। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं नामाभास की स्थिति में। प्रारब्ध नष्ट होते हैं कब, नामाभास की स्थिति में प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार क्रमशः हम लोग शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण कथा जो है वो एकमात्र उपाय है सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के कलमश से दूर होने के लिए। यहां पर बहुत सुंदर शब्द प्रभुपाद ने उपयोग किया है, यहां तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण। और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे इस संसार में हर व्यक्ति कुंठित है, द्वेष से भरा हुआ है, कुंठा जगत है ये संसार, हम सब कुंठित हैं। किसके लिए, धन के लिए, इंद्रियों का तर्पण करने के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, निरंतर हम लोग चिंतित रहते हैं और इस कारण से कभी भी सुखी नहीं रहते। प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम कृष्ण के लिए चिंतित नहीं रहेंगे, कृष्ण की सेवा के लिए क्या करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, चिंताएं नहीं रहेंगे हमारे अंदर कृष्ण की सेवा के लिए, तब तक भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। चिंता करनी पड़ेगी हमें, एक होता है चिंता है संसार के लिए, दूसरी होती है चिंता कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे भक्तों को चिंता रहती है पुस्तक वितरण के समय, चिंता करते रहते हैं भक्त लोग दिन रात, इतना भोज हमने सर पर रख लिया, 2 लाख भगवदगीता निकालनी है, 1 लाख भगवदगीता का वितरण करना है, या फिर मंदिर का निर्माण करना है तो धन संग्रह करना है, लक्ष्मी संग्रह करना है, मंदिर कैसे चलेगा, जन्माष्टमी पास आ रही है, बैंक में पैसा नहीं है, अकाउंट खोखला है, तो इस समय भक्त लोग चिंता करते हैं। तो ये चिंताएं बहुत आवश्यक हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सरल जीवन, सुस्त जीवन, आराम का जीवन भक्ति मार्ग के लिए बिल्कुल खतरनाक है। आराम से जो जीवन बिताना चाहते हैं, जैसे कि कई लोग आध्यात्मिक जीवन को कष्ट समझ के, वैदिक साधन के जो क्रियाएं हैं उसको कष्ट समझ के, उसको तपस्या समझ के क्या करते हैं, भाग जाते हैं, क्या मंदिर छोड़कर भाग जाते हैं, और वो कुछ इंस्टेंट बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं। तत्काल ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए, जिसे भौतिक संसार में इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी है ना, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए लोगों को संसार में। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में आने पर भी हम लोग कृष्ण प्रेम इंस्टेंट चाहते हैं, इंस्टेंट कुछ नहीं मिलने वाला है, शॉर्टकट कोई नहीं है, रास्ता एक ही कट है और वो यही कट है जो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है। रूप गोस्वामी वैरी साधन भक्ति के बारे में चर्चा ही नहीं करते अगर उसकी आवश्यकता नहीं होती तो। उन्होंने क्यों समय बिताया इसके बारे में वर्णन करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में। रसों का वर्णन करने से पहले वैदिक भक्ति के नियम दिए हैं रूप गोस्वामी ने, 32 प्रकार की सेवा अपराध से बचना होगा, 10 प्रकार के नाम अपराध से बचना होगा, 6 प्रकार के वैश्य अपराधों से बचना होगा, 64 भक्ति ने अंग बताए हैं, गुरु की सेवा तत्परता से करनी होगी, कौन कितना कष्ट सहेगा, प्रचार में जाना पड़ेगा, धूप में ग्रंथों का वितरण करना होगा, और सबसे बड़ी बात भक्तों को सहना पड़ेगा, प्राकृत भक्तों को सहना, यह बहुत बड़ी तपस्या है, या भक्तों को सही है या माया को सही, सहन तो करना पड़ेगा। अगर जो भक्तों को सहन कर लेगा तो जीवन के अंतकाल में निश्चित रूप से कृष्ण जो है उस भक्त को कृष्ण का अपना स्मरण कराएंगे। लेकिन जो माया को सहन करने के लिए भक्तों का संग छोड़ देते हैं, अंत में निश्चित काल से फिर माया जो है अपना स्मरण कराएगी, माया का फिर अपना दर्शन है। अगर इस व्यास सिद्धांत को छोड़कर माया का दर्शन अपना लेते हैं तो माया का बहुत सुंदर दर्शन है। क्या है वो दर्शन जानना चाहते हैं,
पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अथो ग्रक्षत्र सुतात वित्तेर जनस्य मोहम अहमेति। ये है माया का दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन है। वाह कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर मकान है, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी सुंदर पत्नी है, कितना सुंदर पति है, कितना धन है, वाह 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 वाह, कितने सुंदर संतानें हैं, उसकी तोतली आवाज, उसके कोमल कोमल हाथ, उसकी तोतली बोली, बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब बच्चे बोलते हैं कि कोयल की आवाज लगती है। और इस प्रकार से हम उस जाल में फंस जाते हैं, संसार के जाल में फंस जाते हैं। शरीर अविद्या जाल जोड़े इंद्रिया ताहे कार जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ माया सुडुमति ताके जेता कठिन संसारे, उसके आगे नहीं बोलेंगे। और इस प्रकार ये संसार बड़ा भयावह है, बड़ा भयानक संसार है ये, मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मृगः, इसका अर्थ जानते हैं? सुप्तस्य सिंहस्य, और शेर अगर सो रहा हो तो क्या मृग जो है उसके मुंह में घुसना चाहेगा? नहीं घुसना चाहेगा। सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मृगः, शेर ऐसा जानवर है कि उसको खुद शिकार करना पड़ता है, ऐसा राजा है शेर कि उसको खुद शिकार करना पड़ता है। कितने दुख की बात है, कैसा राजा है वो जंगल का। तो इस संसार में जितने भी राजा और महाराजा हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं कि नहीं, कई कई राजा है, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पिता को, सबको मरवा दिया। किसके लिए? धन के लिए, स्त्री सुख के लिए या पुरुष सुख के लिए, सबको खुश कर रहे हैं, चिंता मत करिए। तो ऐसे संसार में आप क्या आशा कर सकते हैं? केवल दुख, दुख का ये संसार है, दुख का ये भंडार है। तो इस प्रकार किस प्रकार की सुख की आशा हम यहां पर ना करें। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता सब लोग फंसे हुए हैं। सब बिड़बरा उष्ट खरई संस्तुता पुरुष पशु, सभी जानवर मिलकर जो है शेर का गुणगान कर रहे हैं। तो शेर क्या फिर मनुष्य बन जाएगा? वो फिर भी जानवर है, एक दूसरे का गुणगान करते हैं, एक नेता दूसरे नेता का गुणगान कर रहे हैं। तो मेरा गुणगान करो, मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा, मेरे पीठ में खुजली हो रही है, तुम खुजलाओ, मैं भी तुम्हारे पीठ में खुजलाऊंगा, है कि नहीं? इस तरह से हम दोनों सुखी रहेंगे, इसको कहते हैं राजनीति। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है, साधु ऐसे नहीं होते हैं, वो मुंह पे सुनाते हैं तुम दुष्ट हो, तुम मूढ़ हो, तुम रास्कल हो, सुधर जाओ, कृष्ण भक्ति को अपनाओ, कृष्ण की शरण में आओ, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होने वाला है। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक के प्रवचन में बंबई में प्रभुपाद ने बताया 1974 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर बता रहे हैं, ध्यान सुनिए, प्रभुपाद की आवाज में, प्रभुपाद के शब्दों में सुनिएगा, हिंदी में इतना आनंद नहीं आएगा। स्मॉल मूडास आर वर्किंग हार्ड ओनली टू बिकम हैप्पी एंड द बिग मूडा वॉन्ट्स टू बिकम गॉड। स्मॉल मूडा वॉन्ट्स टू बिकम अ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट नहीं, बाहर की बात सुन, एंड द बिग मूडा वॉन्ट्स टू बिकम गॉड, द डिजीज इज द सेम, आई शैल बिकम द मोस्ट पावरफुल बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ओनली कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल। तो जानते हैं हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं? प्रत्येक जीव इस संसार में कृष्ण बनने के लिए आया है, हम सब यहां कृष्ण बनने के लिए आए हैं। भगवान का धाम इसलिए हमने छोड़ा है कि कृष्ण केवल एक क्यों ना हो, हम क्यों नहीं बन सकते कृष्ण? हम भी ड्रामा करके दिखाएंगे कि हम कितने अच्छी तरह से कृष्ण बनते हैं। इसको कहते हैं द्वेष। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, क्योंकि उन्हीं के पास षड ऐश्वर्य है, आपके पास षड ऐश्वर्य नहीं है। मुंह से बदबू आती है आपके सुबह सुबह, नौ द्वारों से गंध निकलता है, पुरंजन की कथा सुनी है आपने भागवत में, आप कृष्ण हो सुबह सुबह खराटे लेते हो, रात को खराटे लेते हो, आप कृष्ण हो। और ये लोग भागवत कथा करते हैं, बोलते हैं हम सब भगवान हैं। अब यार सभी भगवान हैं तो कथा किसके लिए कर रहे हो आप? और सभी अगर कृष्ण हैं तो कृष्ण कथा किसके लिए कर रहे हो? कितना देखिए मूर्खता का संसार है, दुख की बात है। और ऐसा होते हुए भी हम लोग जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं। मायावादियों से अगर आप सुनेंगे, हम गए थे एक संस्था में, उनके उद्घाटन समारोह में गए थे, और उनके जो मुखिया थे उन्होंने मौका दिया हमें बोलने का। तो बोलने से पहले हमने सुना उनके और उनके शिष्यों ने बोला, तो भागवत से ही बोल रहे थे। हमें लगा ये तो बिल्कुल हमारा ही दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, कमाल है, भागवत से सुना रहे थे। वो जो श्लोक है ना, यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौमय जदि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। गाय और गधे के समान है वो व्यक्ति जो केवल इस कफ वात और पित्त को से बने हुए शरीर को ही अपना मानता है, सर्वस्व मानता है, और तीर्थ स्थानों में जाकर वो क्या करता है, साधु संग नहीं करता है। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा, हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये तो हम भी ये श्लोक कोट करते हैं, प्रभुपाद भी करते हैं। लेकिन फिर उनमें और हमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि जब मायावादी लोग जब कृष्ण का वर्णन करना शुरू करते हैं तो उनके नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं का खंडन करते हैं, उसको क्या बताते हैं, भौतिक बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर ये है। इसलिए दुखाले मशाश्वतम कह के अगर हम भी चुप रह गए तो फिर हमें और उनमें अंतर क्या है? प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं विश्वम पूर्णम सुखायते, दुखाले मशाश्वतम नहीं बोला उन्होंने, दुखाले मशाश्वतम तो इन लोगों के लिए है जो संसार में फंसे हुए हैं, मायावादी लोग, ज्ञानी लोग ऐसी बातें बोल सकते हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या कहते हैं, विश्वम पूर्णम सुखायते, विश्व पूरा जो है सुखाले है, क्योंकि आशिल प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में भागवत कथा का श्रवण किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है कि नहीं? सदधानस्य विवर्धमाना विरक्त मन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुखापयम आसुधत्ते। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में विदुर जी मैत्री मुनि को बता रहे हैं, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, लालायित रहते हैं, किसके लिए, श्रवण करने के लिए, आपकी कथाओं का श्रवण करने के लिए, तो क्या होता है, ये कृष्ण कथा जो है हमें संसार से, इन बद जीवात्माओं से अनासक्त कर देती है, परिवार के सदस्यों से अनासक्त बना देती है, और हमारी आसक्ति क्या हो जाती है, भक्तों के संग में बढ़ जाती है। और इस प्रकार जब दिव्य आनंद की अनुभूति होती है तो समस्त प्रकार के कष्ट, द्वेष, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हर प्रकार के जो कष्ट हैं, हर प्रकार की दुविधाएं हैं, हर प्रकार की जो समस्याएं हैं मन की, वो दूर हो जाते हैं। नहीं तो फिर हम लोग द्वेष से कभी नहीं बच सकते हैं, इन अनर्थों से छुटकारा कभी नहीं पा सकते हैं। कृष्ण कथा इसलिए बहुत जरूरी है। रामचंद्रपुरी को देखिए, कितना दुष्ट था वो, लीला है भगवान की, गौर लीला में रामचंद्रपुरी भाग ले रहे हैं, उनका रोल यह है कि वो हमेशा मायावादियों का साथ देंगे और वैष्णव सन्यासियों की निंदा करेंगे, महाप्रभु की भी निंदा करेंगे, गुरु तक को नहीं छोड़ेंगे, ये उनका रोल है। रामचंद्रपुरी ब्रजलीला में जटिला है तो वहां पर भी ये यही करते हैं, वो कार्य है ना, राधा रानी को छोड़ते नहीं। तो यहां पर महाप्रभु को छोड़ा नहीं, महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे, जब प्रसाद लेना शुरू किया तो आगे रामचंद्रपुरी हमेशा की तरह बोले, अरे देखो देखो सन्यासी होकर इतना खाता है ना, और जब सन्यासी लोग नहीं खाते तो बोलते जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये तो फल्गु बैराग है, कुछ लेते क्यों नहीं प्रसाद, यानी कि वो छोड़ते नहीं थे किसी को। जैसे वो बोलने लगते शिशुपाल की तरह पर निंदा ही करते, शिशुपाल भी हमेशा द्वेष के कारण जैसे ही शिशुपाल ने जन्म लिया और बोलना शुरू किया, उसी समय तत्काल कृष्ण की निंदा शुरू कर दी। बोलते ही कृष्ण की निंदा शुरू कर दी उसने। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग जो हैं इतने महान हैं कि शिशुपाल के इस निंदा को भी उन्होंने गुणगान में बदल दिया। अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तो रामचंद्रपुरी देखिए, उसकी दुष्टता देखो। जब वो शिशुपाल माधवेंद्रपुरी के पास गए रेमुणा में, जो अंतिम समय में थे और भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे और विरह का भाव प्रकट कर रहे थे, श्रीमती राधारानी का भाव प्रकट कर रहे थे, हे मथुरा नाथ कब वापस आएंगे आप, कब आपके दर्शन हो पाएंगे, आंसू बहा रहे हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी वहां पहुंचे और अपने गुरुदेव से मिले। जब बोले गुरुदेव आप रो रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, आपको तो वेदान दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती, आप शोक कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने देखा रामचंद्रपुरी को, दुष्ट निकल जाओ यहां से, अगर तुम्हारा मुंह देखकर मैंने शरीर छोड़ा तो मुझे सदगति नहीं प्राप्त होगी, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने इसलिए इस तरह से अनुवाद किया अंग्रेजी में, सिंफुल रास्कल, सिंफुल भी है रास्कल भी है। रामचंद्रपुरी एकदम कांपने लगा, निकाल दिया श्रीपाल माधवेंद्रपुरी ने, त्याग दिया उसको। और श्रीपादेश्वरपुरी क्या कर रहे थे, अंतिम समय में अपने गुरु की नम्रता पूर्वक सेवा कर रहे थे, उनका मलमूत्र साफ कर रहे थे। यह है परीक्षा की घड़ी शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, कि अंतिम समय में क्या होगा। सबका अंतिम समय आएगा और हम लोग क्या करेंगे ऐसे अंतिम समय में, उस समय हमारी भक्ति की बहुत कड़ी परीक्षा होगी। और हम देखेंगे कई भक्त लोग भागेंगे, बड़ी दूर तेजी से भागेंगे, माया के ऊपर सवार होते हुए, मनोरते नास्ति धावतो भई, मन के रथ पर आरूढ़ होकर भागेंगे बड़ी तेजी से गुरु को छोड़ के। बोले अब छुटकारा मिल गया गुरु से, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। गुरु की सेवा तो तब तक करनी होती है जब गुरु जीवित है, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा हमसे एक भक्त ने, जब तक गुरु जीवित है तब तक ही सेवा करनी है ना, उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सच में ये प्रश्न पूछा हमसे किसी ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इस प्रकार द्वेष बना होता है तो कभी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। और इस द्वेष से क्रोध से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, त्रिणादपि सुने चैन तरोरपि सही सुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि। जब तक ये गुण हमारे अंदर जागृत हो गए तब तक हम लोग इन अनर्थों से नहीं बच सकते हैं। और ये निष्ठा का स्तर है, ठाकुर भक्तिनोद ने बताया है ये निष्ठा का स्तर है। और इस स्तर से गुजरना होगा, अपने आप को तृण से भी नीच मानना पड़ेगा, अपने आप को वृक्ष से ज्यादा भी सहनशील बनाना पड़ेगा, दूसरों को मान देना पड़ेगा बिना मान की इच्छा रखते हुए, तब जो है हरिनाम हमारी जीवा में बैठेगा, तब हो पाएगा कीर्तनीय सदाहरि। नहीं तो सोलह माला में जीवन भर हटके रहेंगे, कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, हाँ अधिक से अधिक, क्षमा करिए, अधिक से अधिक सोलह माला में हम लोग अटके रहेंगे जीवन भर, अगर ये अंदर हमारे अंदर गुण जागृत नहीं हुए तो। रुचि असंभव है, जन्म जन्मांतर तक हम लोग अटके रहेंगे अनर्थों के साथ, निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। लोभ का तो मतलब ही नहीं जागृत होता है, राग मार हंसी आती है, हमें हंसना नहीं चाहते हम। लेकिन अभी तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं, इसलिए बताया गया है जब भी कोई शंका हो हमें क्या करना चाहिए, स्वतो वृत्ते हे पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना, साधु मार्गानु अनुगमन। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं जैसा पूर्ववर्ती आचार्य कर गए हैं, महाजनो ये न कथा सपनता। तो इसलिए इस प्रकार हम लोग इन बातों को ठीक से समझें। अगर वैकुंठ का वर्णन आप सुनेंगे, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत के तृतीय स्कंद में देवताओं को सुना रहे हैं, वैसे संवाद चल रहा है विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच में, अभी भी ये भागवत का चौथा स्कंद भी विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच में संवाद है, भागवत का तृतीय स्कंद और भागवत का चौथा स्कंद। और क्षमा करिए, मैत्री मुनि से विदुर जी सुन रहे हैं और मैत्री मुनि से पूछा है विदुर जी ने, आप विस्तार से बताएं, आपने भगवान बरादेव के बारे में बताया बड़े संक्षेप में, मैं चाहता हूं आप बड़ा विस्तार से इसका वर्णन करें। तो विस्तार से वर्णन करने के लिए सबसे पहले वो बताते हैं कि किस तरह से दिति ने गर्भ धारण किया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जब धारण किया अपने गर्भ में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, ब्रह्मांड में अंधकार छा गया केवल इन दोनों को अपने गर्भ में धारण करने के कारण। बताइए क्या शक्ति होगी, सूर्य अपना प्रकाश नहीं दिखा पाया। ये है नित्य परिकर भगवान के। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि एक जीव, एक गौड़िया वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। इसलिए हम प्रभुपाद की शरण में बहुत सुरक्षित हैं, चिंता ना करें। तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ये मैत्री मुनि सुना रहे हैं। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, बोलते हैं हे ब्रह्मदेव, देखिए कुंठित है बेचारे, जो देवता हो या मनुष्य हो या पशु हो, कीट हो या पतंग हो, जलचर हो या थलचर हो, कोई भी जीव हो, ब्रह्मा जी के लोक से पाताल लोक तक प्रत्येक जीव भयभीत है। ब्रह्मा जी भी भयभीत रहते हैं और साधारण जीव भी भयभीत रहता है। एक चींटी को देखिए कितना भय रहता है उसके अंदर। आप और बच्चे खेलते हैं, कभी उंगली ऐसे रखते हैं, देखा आपने बच्चों को खेलते हुए, बड़ा मजा आता है उनको। जिस तरह से हमें मजा आता है, उसी तरह से यमदूतों को भी बड़ा मजा आता है। वो भी जीवात्माओं को आगे पीछे घुमाते रहते हैं जो भागने का प्रयास करते हैं। भयावह संसार है ये पूरा, कभी ऊपर जाता है कभी जीव, तो कभी नीचे जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास ये देवतागण आए और उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, चारों तरफ अंधकार हो गया, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी हमेशा की तरह वो जानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान दिव्य ज्ञान प्रकट कर देते हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव हैं। एक बार और बताना चाहेंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं तो सबसे पहले जीव भगवान को जो भूले थे वो हैं ब्रह्मा जी। सबसे पहले जीव जो भगवान को भूले वो हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवत धाम का वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले। इससे पहले वो बताएं कि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कैसे बने, वैकुंठ के पार्षद थे ये जय विजय। इससे पहले ब्रह्मा जी जो है वैकुंठ लोक का वर्णन कर रहे हैं, भगवत धाम का वर्णन कर रहे हैं। भगवत धाम के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। इस क्षण कृष्ण क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं और मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं। ये दो बातें पता होना चाहिए धाम जाने के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस समय कृष्ण क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए और उनको कैसे प्रसन्न किया जाए ये पता होना चाहिए। ठीक 9:30 बजे, 9:26 में अभी कृष्ण कहां है और हम उनकी प्रसन्नता के लिए भी क्या कर सकते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, है ना। तो इस प्रकार नाना प्रकार से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो भगवत धाम का वर्णन कर रहे हैं और क्या हुआ, कई प्रकार के पक्षी हैं वहां पर, कई प्रकार के पक्षी हैं धाम में, कबूतर हैं, कोयल है, कौए का वर्णन नहीं किया गया। हमने पढ़ा पक्षियों के बारे में लिखा है, नाना प्रकार के पक्षियों का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें नहीं लिखा कि कौए भी गुणगान कर रहे थे। अब पता नहीं कौआ है या नहीं है, लेकिन इस जगत में तो है। काक भुशुंडी जो है गरुड़ जी के समक्ष बैठे भगवान राम के बारे में बता रहे हैं। देखिए अद्भुत दृश्य देखिए, गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु के वाहन है, लेकिन काक भुशुंडी से जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं उनसे राम कथा सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। उनको छोड़कर बाकी सारे कौए क्या क्या कर रहे हैं, बस इतने सारे कौए हैं संसार में। अगर आप गए होंगे 30,000 न्यायालयों में जाइए, आप जाके देखिए कितने सारे कौए घूम रहे हैं वहां पर, विस्तार से आप किसी और से पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं ये सारे जितने भी पक्षी हैं, कबूतर हैं, कोयल हैं और चक्रवाक और हंस और तोता और मयूर अपनी अपनी आवाजों से भगवान का गुणगान करते रहते हैं, अचानक वो भ्रमर से सुनते हैं। कभी कभी भ्रमर जो है वो निरंतर गुणगान जब कर रहा होता है, ये सारे पक्षी जितने भी हैं भ्रमर को मौका देते हैं कि हाँ वाह 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 क्या गीत गाया आपने, क्या गीत गाया आपने। भ्रमर गीत जैसे दशम स्कंद में है कि नहीं, राधा रानी भ्रमर के समक्ष हो गए, भ्रमर से बात कर रही है श्रीमती राधा रानी, और भ्रमर जो है वो घूम रहा है, घूमते भ्रमर है कि नहीं, इस प्रकार घूमता रहता है और अपनी आवाज में पक्षी के कैटेगरी में भी नहीं आता है, देखा जाए तो कीट है, कीड़ा है भ्रमर एक तरह से, लेकिन उस कीड़े को भी जो ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जितने भी ये जीव हैं ये सब चिन्मय है, कोई जड़ वस्तु नहीं है आध्यात्मिक जगत में, ये सब उनका अपना नित्य शाश्वत सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। भ्रमर के रूप में भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, और जब भ्रमर गुणगान करता है तो जितने भी वहां पक्षी हैं वो चुपचाप ये भ्रमर गीत सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं इस भौतिक जगत की विडंबना तो देखो कि यहां पर जब गधा जो होता है वो गधा अपनी आवाज निकालता है, गधे की आवाज कैसे होती है, वो गधा जब आवाज निकालता है तो गधे को अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। आप जानते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत की विडंबना देखो, ये जो गधा है ये तो गधा है, और जिन लोगों की गधे जैसी आवाज है और जो कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं वो सब यही सोच रहे हैं कि मेरी आवाज कितनी मधुर है, बहुत मधुर है ना, लेकिन मधुर कुछ नहीं है संसार में। तो ये बड़ा दुख लगता है देखकर, दुख होता है देखकर कि इस संसार की विडंबना देखिए, जो जो भी जीव जिस शरीर में प्रवेश करता है, जिस योनि में प्रवेश करता है, उस योनि को सबसे ज्यादा सुखी मानता है। और इसी तरह से कई प्रकार के पौधे हैं वहां पर, कई प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है वैकुंठ में, मंदार, कुंद, कुरब, उत्पल, चंपक, अर्ण, पूर्णाग, नागकेशर, बकुल, पारिजात। ये पारिजात स्वर लोक से लाया हुआ पारिजात नहीं है, असली पारिजात है। एक सत्यभामा के लिए कृष्ण पारिजात लेके आए, इंद्र को हरा के आए, है ना, पारिजात फूल लेकर आए। एक पारिजात फूल अगर आप लेके आए यहां पर स्वर्गलोक से, पूरे दिल्ली को सुगंधित कर सकता है वो, एक फूल काफी है पर्याप्त। फिर इन फूलों का क्या कहना जो वैकुंठ जगत में है, जिनका कार्य यही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सुगंध फैलाना, कितना सुगंध होगा इसमें। इस संसार में तो केवल दुर्गंध ही दुर्गंध है, केवल दुर्गंध है, और शरीर से तो इतनी दुर्गंध निकलती है कि इसको सुगंधित बनाने के लिए कितने प्रकार के, नाना प्रकार के इत्र का उपयोग करना पड़ता है। लोग नहाते नहीं है पाश्चात्य जगत में, 15-15, 20-20 दिन नहीं नहाते हैं, और जिस दिन स्नान करते हैं उस दिन उत्सव बनाते हैं स्नान यात्रा, और बाकी दिनों वो क्या करते हैं, सेंट लगा के जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो स्नान नहीं किए। लेकिन वहां पर एक विशेष पौधा है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी महारानी को जब देखते हैं, तुलसी महारानी को देखते तो सारे जितने भी पौधे हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, और सब लोग उनकी तपस्या के बारे में चिंता करते हुए उनको गुणगान करते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब तुलसी को अर्पित किया जाता है, भगवान के गले में डाला जाता है, तो जितने भी ये सारे पौधे हैं, जितने भी ये सारे फूल हैं, जितने भी ये सारे पौधे हैं, वो बड़े खुश होते हैं देखकर, तुलसी महारानी को देखकर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भक्तों में आपस में द्वेष नहीं होता है, एक दूसरे की सेवा को देखकर वहां प्रसन्न होते हैं, यह है वैकुंठ जगत। प्रभुपाद कहते हैं एक इस जगत में आने का सबसे मूल कारण यह है कि हमारे मन में द्वेष भरा है भगवान के लिए। और अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, कृष्ण भक्ति में अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हमारे मन में द्वेष जो है भक्तों के प्रति कम हो रहा है या फिर समाप्त हो चुका है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अभी भी हम प्राकृत जगत में हैं। इसका मतलब यह है कि दोबारा हम ध्येय प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। द्वेष कई प्रकार के होते हैं, द्वेष करना भी एक प्रकार का वैष्णव अपराध है। छह प्रकार के वैष्णव अपराधों में एक वैष्णव अपराध है द्वेष करना भक्तों से। द्वेष, इस शब्द में ही द्वेष छुपा हुआ है, इतना भयानक शब्द है ये। ये सब वास्तव में अनर्थ इसलिए कहा जाता है, अनर्थ का मतलब है, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं, कोई भी कार्य जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो सब अनर्थ है। बस यही है अनर्थ के ऊपर चर्चा। कोई भी कार्य जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है वो सब अनर्थ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, इस द्वेष की आवश्यकता नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हमने अपनाया हुआ है, इसको स्वीकार किया हुआ है हम लोगों ने। अमोघा को देखिए कितना द्वेष भरा हुआ था उसके अंदर। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंच गया, किस लिए? केवल इसलिए कि महाप्रभु में भी दोष देखना चाहता। महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य वही खड़े थे सामने, और सीता ठाकुरानी जो है, क्षमा करिए, उनकी भार्या का नाम क्या था? मालिनी। सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी मालिनी थी, नहीं मालिनी नहीं, वो तो शिवास पंडित की पत्नी थी मालिनी देवी, शाठी माता। तो महाराज सूचना दे रहे हैं शाठी माता। तो शाठी माता जो है वो भोजन तैयार कर रही थी, पकवान तैयार कर रही थी भगवान के लिए, और महाप्रभु बाहर बैठे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य द्वार पे खड़े थे कि अमोघ जो है कहीं घुस ना जाए घर में, दामाद था ना उनका, तो वो नहीं चाहते थे कि यहां पर अंदर आकर ये अपराध करे और निंदा करे। महाप्रभु को मैंने बड़ी नम्रता से बुलाया है, ये साधारणतया तो इसलिए आता आसानी से किसी घर जाते नहीं है, और आज आ गए हैं, और ये अमोघ कहीं आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर व्यंजन शायद तैयार हुआ हो या ना हुआ हो, तो अंदर गए, और अंदर जैसे ही वो गए देखने के लिए अमोघ घुस गया अंदर। अमोघ जैसे घुसा, अरे बाप रे, बहुत सारा व्यंजन रखा हुआ था, इतना सारा व्यंजन, सन्यासी होकर इतने सारे व्यंजन घूम रहे खा रहे हो, इतने सारे चींटियां चींटी रेंग रहे हैं जमीन पर, कितने दुखी बात। तो महाप्रभु की महानता देखिए, जब रामचंद्रपुरी ने भी उनकी निंदा की और अमोघ ने जब निंदा की तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने प्रसाद कम ग्रहण किया। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे थे, कई प्रकार की शिक्षा है चैतन्य चरितामृत में। साधारणतः जो परिपक्व नहीं है भजन में, जैसे कि सहिज्या लोग होते हैं, वो क्या करते हैं चैतन्य चरितामृत में केवल वही शिक्षा लेना चाहते हैं जिसमें रसों के बारे में वर्णन किया गया है, राधा भाव के बारे में सुनना चाहते हैं, इन शिक्षाओं के बारे में कोई चिंता नहीं करना चाहते। महाप्रभु ने ये भी तो सिखाया है, ये भी तो सीखो, ये हम नहीं सीखेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, हम भाव की दशा में पहुंच चुके हैं। तो अमोघ ने जब देखा बड़े ध्यान से और निंदा शुरू की, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, छड़ी लेके भागा, वो भागे वो सार्वभौम भट्टाचार्य अमोघ के पीछे, अमोघ भागता रहा, सार्वभौम भट्टाचार्य पीछे भागते रहे। तो इतना उन्होंने इतना क्रोधित होकर उन्होंने ये कहा कि अच्छा हो कि मेरी बेटी जो है विधवा हो जाए, इस दुष्ट के कारण आज महाप्रभु के चरणों में अपराध हो गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी हुए, उन्होंने महाप्रभु के चरणों में जाके क्षमा याचना की, मुझे आप मेरे दामाद को क्षमा कर दें। तो चैतन्य महाप्रभु देखा कि तीन दिन के भीतर क्या हुआ, अमोघ को हैजे का रोग हो गया, और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने गए। जानते किस लिए गए? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसी कारण से, क्योंकि अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य के रिश्ते में था, उनका दामाद था, इस कारण से चैतन्य महाप्रभु गए। तो पूरे परिवार में अगर एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो पूरे उस परिवार का तीन पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर कोई उत्तम वैष्णव बन जाता है, तो कोई मध्यम अधिकारी बनता है तो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गए अमोघ के पास और अमोघ के छाती पे हाथ फेरा, हैजे के कारण बड़ा पीड़ित था, उस समय कोई इलाज भी नहीं था इतना। तो अमोघ की छाती पे हाथ फेरते हुए महाप्रभु कहते हैं, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे हृदय में द्वेष कहां से आया? तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहे,
उठो अमोक उठो और कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही अमोक ने महापुरुष से कीर्तन सुना, हरि नाम सुना, अमोक उठ खड़ा हुआ, स्वस्थ हो गया और वो भी उस स्वर में कीर्तन करने लगा, नृत्य करने लगा, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। काश ऐसे कोई हो, कोई हमारे हाथ छाती में आकर भी इस प्रकार हाथ फेर दे और हम भी भाव की दशा में पहुंच जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने षट गोस्वामियों को शिक्षा दी कि आने वाले समय में कोई भाव की दशा में नहीं होगा एकदम से। अभी तो अधिकांश जो परिकर है कम से कम भाव की दशा में है, मेरे साथ जो आए हैं और यहाँ जो भक्त हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला कली काल में। इसलिए आप सब क्या करो, इन सब के लिए भक्ति संबंधित ग्रंथ लिखो, जिसके माध्यम से आने वाले जो जीव हैं, बद जीव हैं, वो साधन भक्ति के माध्यम से अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त कर सकें और क्रमशः जो है भाव की अवस्था तक पहुंच सकें। तो ये द्वेष से बचना बहुत जरूरी है। अगर द्वेष से नहीं बचेंगे तो अपराध होते रहेंगे। अपराध का मतलब होता है कोई भी वो कार्य जिससे गुरु और वैश्य हमसे संतुष्ट नहीं है, कोई भी वो कार्य जिससे गुरु और वैश्य संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अपराध के कैटेगरी में आ जाता है। द्वेष करते हैं, हम देखते हैं कि कोई भक्त न्याय आया है, आज उसको आए हुए केवल दो दिन हुए हैं या एक साल हुआ है, दो साल हुआ है, वो मंदिर का अध्यक्ष बन गया, द्वेष, मन में द्वेष होता है। और इसी द्वेष से हम लोग क्या करते हैं, राजनीति करते हैं, कूटनीति करते हैं। आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ में इसका कोई स्थान नहीं है। अगर राजनीति सुननी है तो कृष्ण के बारे में सुनो कि कृष्ण ने कैसे राजनीति की। कृष्ण की लीलाएं इतनी दिव्य है कि उसमें सब कुछ है। कोई सर्कस देखना चाहता है तो आप सर्कस भी देख सकते हैं। आप जानते हैं सर्कस क्या है, किस तरह से कृष्ण जो है कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ये सर्कस से कम है क्या? कोई अगर आप देखना चाहते हैं कि हैवी वेट जो लिफ्टिंग आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी आप देख सकते हैं कृष्ण कथा में, किस तरह से कृष्ण जो है गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं। तो सब कुछ है कृष्ण की लीलाओं में। और राजनीति के बारे में सुनना चाहते हैं, राजनीति में बड़ा ही आपको इंटरेस्ट है तो महाभारत पढ़िए, राजनीति से भरा हुआ है। लेकिन ये राजनीति जो है महाभारत में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी जो राजनीति जो मन में भरी है भौतिक धरातल पर वो समाप्त होगी, फिर हम भगवद गीता का लाभ उठा पाएंगे। तो राजनीति किसी भक्त को आगे नहीं बढ़ने देता, आगे नहीं बढ़ने देना। जैसे बिच्छू होता है, क्या करते हैं बिच्छू होते हैं ना, पानी में बिच्छू होते हैं, एक बिच्छू बेचारा जो है बाहर निकलने का प्रयास करता है तो दूसरा बिच्छू क्या करता है, उसकी टांग खींच के पीछे कर देता है उसको, तुम कहां से बाहर निकल रहे हो, आओ पीछे। तो इसी तरह से कई बार हम देखते हैं कि वैश्य समाज में हम प्राकृत जब अवस्था में होते हैं, जब हम नियोफाइट स्टेज में होते हैं, प्रारंभ अवस्था में होते हैं, तो हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, प्रशंसा किसी की होती है। मान लीजिए आप भक्त बैठे हैं और आपके सामने किसी नए भक्त की प्रशंसा हो रही है, और आप बहुत पुराने भक्त हैं और आपके सामने किसी नए भक्त की प्रशंसा की जा रही है, कितना अच्छा प्रचार है, देखिए कितने उन्होंने भक्त बना दिए हैं, कितना अच्छा उनका प्रोग्राम चल रहा है, कितने अच्छा प्रचार करते हैं, कितना अच्छा वो जप करते हैं, कितने शरणागत हैं, कितने समर्पित हैं। वो सब तो ठीक है, सुनने वाला क्या कहे, द्वेष जिद में होता है वो कुछ शब्दों का विशेष रूप से उपयोग करते हैं, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन, ये लेकिन शब्द बहुत आए, लेकिन ऐसा है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ना क्या होता है कि ये सब यश कमाने की इच्छा बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, इतना जल्दी इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अभी से इनको संन्यास दे दिया और अभी से इनको अध्यक्ष बना दिया, ये तो अभी अभी आए हैं, दो साल ही हुआ है इनको। कई प्रकार के लेकिन होते हैं। प्रभुपाद बड़ा उदाहरण देते, अच्छा प्रभुपाद नेक्टर में है, प्रभुपाद सुनाते एक स्टोरी, दो मित्रों में चर्चा हो रही है, एक मित्र कहता है अरे तुम जानते हो उस मित्र को, वो अभी हाईकोर्ट का जज बन गया है। तो उसका मित्र कहता है अरे जज तो बन गया, ऑनरी मिलता होगा उसको, तनख्वाह थोड़ा मिलती है उसको। जैसे किसी ने बोला मान लीजिए कि आप जानते हो उसको पीएचडी मिल गया, डिग्री मिल गई, ये डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, ओ मैं जानता हूं उसको ऑनरी डिग्री मिली है, मेरे साथ ही पढ़ता था, चौथी बार से वो। तो इसको कहते हैं द्वेष।
लेकिन शब्द का उपयोग करना। तो इस प्रकार से हम लोग कई प्रकार से द्वेष प्रकट करते हैं, हम चाहते नहीं है कि कोई हमसे ज्यादा आगे बढ़े, उसके हम टांग खींचते हैं, इसलिए हम राजनीति करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जब द्वेष होता है तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे भक्त को, यानी कि ऐसे भक्त को क्या करने के लिए, उसके यश को कम करने के लिए ऐसे भक्त की हम निंदा करते हैं, तो द्वेष से फिर निंदा शुरू हो जाती है। तो द्वेष और भय, भय क्यों होता है, क्योंकि हमें हमारा स्थान कहीं वो ना ले ले, हमारा इतना ऊंचा पद है, हम इतने साल से भक्त हैं, हम इतना प्रचार कर रहे हैं, ये नया 2 साल का है वह भक्त है, अब इसका गुणगान ज्यादा हो रहा है, तो अब इसको मैं कैसे पीछे लेकर आऊं, इसकी निंदा करके, इससे भय रहता है, भय होता है ना। तो द्वेष या भय, ये 2 कारण हैं वैश्य अपराध के। वैश्य अपराध इन्हीं 2 कारणों से होता है। भयभीत है, कोई ग्रंथों का वितरण कर रहा है, वो सब तो ठीक है, ग्रंथों का वितरण वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्रंथ पढ़ने भी चाहिए, मंगल आरती में तो वह आता नहीं है, वो क्या फायदा इतनी सारी किताबें बांटकर, यानी कि प्रशंसा का कोई मतलब ही नहीं है, किसी ना किसी तरीके से खोर तो ढूंढना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। ये है माया, माया का लक्षण यही है कि वो द्वेष पैदा करती है। तो इस प्रकार हम लोग आपस में, हमें देश की भावना छोड़नी चाहिए, और भक्तों में कितने भी अवगुण क्यों ना हो, अच्छे गुण देखकर, उन अच्छे गुणों को देखकर उनका गुणगान करना चाहिए। कई बार ये भी कहा जाता है, प्रभु जी, जैसे हाल ही में एक बार हुआ था, एक भक्त था, नया भक्त है, बड़ा अच्छा गाता हो, तो हमें, हमने सोचा कि चलो, कीर्तन चल रहा था, वैसे गुरु पूजा तो और किसी ने गाया, तो उसके बाद उस भक्त को हमने आगे बढ़ाया कि प्रभु आप गाओ, ये प्रार्थना गाओ महाप्रभु के लिए, जो प्रार्थना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तो बड़ा अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया उसने। फिर किसी ने आके हमें बताया कि प्रभु जी अब ये नए हैं, ये अगर आप इनको गवाएंगे तो फिर ये हमारी बातें नहीं सुनेंगे, ये गर्वित हो जाएगा, इसको आप पीछे खींचिए, और तो और उसको करताल भी नहीं बजाने दिया फिर, ऐसा व्यक्ति। लेकिन ये प्रभुपाद का विजन और मिशन नहीं है। प्रभुपाद नए से नए लोगों को इंग्लैंड भेजते थे, अफ्रीका भेजते थे, यूरोप भेजते थे, पाकिस्तान भेजा, प्रभुपाद ने नए से नए लोगों को विश्व के हर कोने भेजा। प्रभुपाद ने 4 साल आए हुए भक्तों को जीबीसी बना दिया, टेंपल प्रेसिडेंट बनाया। प्रभुपाद ने 2 साल के भीतर कई भक्तों को, कई शिष्यों को संन्यास दे दिया, 3 महीने में संन्यास दे दिया प्रभुपाद ने। नया व्यक्ति है, अभी अभी आया है, मैं पिछले 10 साल से हूं और ये 3 महीने से आया, इसको संन्यास मिल गया, प्रभुपाद ये ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद क्या करते थे, बुलाते थे, देखो ऐसा है, यहां पर ये लोग सब बात कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम बंबई आना, मैं तुम्हें वहां संन्यास दूंगा। तो प्रभुपाद इस तरह से करते थे, या कोई बंबई में होता तो बोलते थे तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन पहुंच जाओ, मैं वहां पहुंच रहा हूं, तो वहां पहुंचूंगा, वहां संन्यास तुम्हें दे दो। तो इस प्रकार वैष्णव क्या देखते हैं, वैष्णव तो भक्तों की वैष्णवता देखते हैं, गुरु तो शिष्य की वैष्णवता देखते हैं, साल नहीं देखते केवल, क्योंकि यही भगवत गीता का सिद्धांत है। क्या है गीता का सिद्धांत, चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, जन्म से नहीं भक्तों के कर्म से देखा जाता, भक्तों का कर्म देखा जाता है, यानी कि उनकी सेवाएं देखी जाती हैं, उनकी सेवाएं देखी जाती हैं, उनके गुणों को देखते हैं गुरु, उनकी सेवाओं को देखकर, उनके गुणों को देखकर शिष्य को गुरु आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे शिष्यों को देखकर हमें खुश होना चाहिए, और जब हम खुश होंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेया प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर ऐसे भक्तों की उन्नति को देखकर हम लोग खुश होंगे तो भगवान कह रहे हैं गीता में कि जल हम भी धर्मात्मा बनेंगे। केवल प्रशंसा करने मात्र से, ऐसे भक्तों की प्रशंसा करने मात्र से हमारे हृदय में भी भक्ति की वृद्धि होगी, लेकिन द्वेष करने से हम लोग दूसरों का नुकसान तो कर रहे हैं और खुद का नुकसान भी कर रहे हैं। वैश्य शिष्टाचार निश्चित रूप से आवश्यक है, वरिष्ठ भक्तों का आदर निश्चित रूप से होना चाहिए, और साथ में यह भी जरूरी है कि जो कनिष्ठ हमसे हैं उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, प्रशिक्षण को ऐसा दिया जाए कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन प्रशिक्षण ऐसा ना दिया जाए कि वो चम्मच भी उठाए तो आपसे पूछना पड़े उसको, उसको छींकना भी पड़े तो आपको फोन करे, प्रभु जी मैं क्या छींक सकता हूं। अगर ऐसी दशा है तो इसका मतलब यह है कि हम प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, हम केवल आसपास के चंद गुलाम इकट्ठे कर रहे हैं। और यह आंदोलन गुलामी से आगे नहीं बढ़ने वाला है। भक्ति हृदय का विषय है, दिखावे का विषय नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हृदय में हम लोग भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति श्रद्धा जागृत करें, सेवा की भावना जागृत करें। हमें देखना है कि प्रचार हम कर भी रहे हैं, और अगर हम को लोग गुरु के रूप में भी देखते हैं, शिक्षा गुरु के रूप में भी देखते हैं, तो हमारी हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारा चिंतन ये होना चाहिए, हमें ये हमेशा सोचना है कि जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं ये हमारी सेवा है। हमारे संप्रदाय में जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो कभी अपने आप को गुरु नहीं मानते। इसलिए शिल भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर जब शिल प्रभुपाद को देखते या अन्य किसी कुछ शिष्यों को देखते तो शिल भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर क्या बोलते, दासो अस्मी, मैं तुम्हारा दास हूं, यानी कि तुम मेरे दास हो। जाओ तुम नए भक्त हो, जूते साफ करो, कपड़े धो, कमरा साफ करो, उल्टे खड़े हो जाओ, जब तक मैं नहीं कहूंगा सीधे मत खड़े होना, जब तक मैं नहीं कहूंगा छींकना नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम इधर ही बैठे रहना, सीधे बैठो, तो इस तरह से वो तो व्यक्ति बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, उसके हृदय में श्रद्धा नाम की कभी जागृति नहीं होगी बात, और जो भी कुछ दिखाई देगा वो केवल क्या होगा, आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन होगा, बनावटी रूप से होगा। तो ये बनावटी दुनिया नहीं है। प्रभुपाद ने इस आंदोलन को इस तरह से नहीं बढ़ाया, प्रभुपाद ने भक्तों को प्रेम दिया, भक्तों की सेवा की, उन हिप्पियों की सेवा की प्रभुपाद ने, उनके बर्तन धोए, उनके प्लेट धोए प्रभुपाद ने, बाउरी स्ट्रीट में जो ड्रग्स लेते थे, जो नशा करते थे, वो कभी स्नान नहीं करते थे, वो लोग जब आते थे तो प्रभुपाद उनके आने से पहले कमरा साफ करते थे, उनके जाने के बाद उनके झूठे बर्तन धोते थे प्रभुपाद, प्रभुपाद वो आचार्य हैं। इसलिए हमें शास्त्र बताया गया आचार्य उपासनम, आचार्य के निकट रहना चाहिए, गुरु के निकट रहना चाहिए, आचार्य से सीखना चाहिए कि किस तरह से भक्त बनाया जाए, प्रभुपाद ने किस तरह से भक्त बनाया। और इसी कारण से आज तीन लोकों में प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है। किस कारण से, प्रभुपाद ने कहा आप क्या सोचते हो कि मैं पहले ही सेवा करता था। एक थे उनका नाम था देवानंद प्रभु था या करंदर प्रभु थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं आप लोगों की सेवा में लगा हूं, आप ऐसा मत कहिए, आप गुरु हैं, आप हम सबके आचार्य हैं, हमें बल्कि ये बात कहनी चाहिए हम आपके सेवक हैं, आप ये मत कहिए कि आप हमारी सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं तो हमेशा सेवा कर रहा हूं, जब तुम लोग बाहर से आते थे बाउरी स्ट्रीट में, तुम्हारे आने से पहले मैं बाजार जाता, सब्जी खरीदता, कमरा साफ करता, फिर तुम लोगों को प्रसाद परोसता, और तुम लोग जब चले जाते तुम्हारे बर्तन धोता, तुम्हारे थाली धोता मैं, और वो सारे इलाका साफ करता मैं, तुम लोगों को पता भी नहीं, प्रभुपाद बताते भी नहीं थे, और वो लोग जब खड़े हो जाते, तुम लोग जो खड़े होते थे शौच क्रिया के लिए, तुम जानते हो सबसे पीछे मैं खड़ा होता था, प्रभुपाद बिल्कुल चुप रहते। इसको कहते हैं त्राद अपि सुनी चेन तरोर अपि सही सुना अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदारे। प्रभुपाद ने हिप्पियों को भी सम्मान दिया। हमारे हृदय में है ये करुणा, हमारे हृदय में है ये, हमारा क्या हृदय इतना विशाल है। यह है प्रभुपाद जी की महावदन न्यायता, नमो महावदन न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरतिश्वे नमः। एक तो महाप्रभु महावदन न्याय है, एक शिल प्रभुपाद महावदन न्याय है। कितनी करुणा है हृदय में, जहां करुणा है वहां द्वेष नहीं हो सकता है, और जहां द्वेष है वहां करुणा का मतलब ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, भक्तिनो ठाकुर कहते हैं। तो प्रभुपाद जी के हृदय में करुणा ही करुणा भरी, कंपैशन, बिल्कुल किसी जीव को देखकर हृदय में उनके करुणा फूटती थी, क्रंदन करते थे वो, रोते थे, और ऐसे प्रभुपाद ने पूरे जगत को कृष्ण भावना भावित बना दिया। तो हमें प्रभुपाद से सब सीखना है। तो इस प्रकार हम लोग द्वेष से बचने का प्रयास करें, और देखो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और कोई भी नया भक्त हो उनको हम बड़ा उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, और हम से कोई बड़े हों। नारद जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि किस तरह से हमें भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वैश्य समाज में जो हमारे बराबर के हैं उनसे मित्रता बनानी चाहिए, बड़ों से मित्रता नहीं बनाते हैं, बराबर के लोगों से मित्रता बनाई जाती, और जो हमसे बड़े हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। वरिष्ठ जो है, हमसे एक दिन भी पहले कोई आया भक्त, वो तो उसकी सेवा हमें करनी चाहिए, और जो हमसे कनिष्ठ है यानी कि नए भक्त हैं, हमसे जूनियर है, उनके प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए, तब जाके जो कोई कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बन सकता है। नहीं तो हम जीवन भर हरिनाम लेते रहेंगे, जीवन भर सोला वाला फेरते रहेंगे, हम कनिष्ठ अधिकारी ही बने रहेंगे जब तक हृदय में करुणा नहीं आएगी। तो इस प्रकार कई प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की सेवा की जा सकती है, और कहने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ था हमारे पास, समय बीतता जा रहा है, प्रसाद का समय हो गया है, और हम लोग यही प्रयास करें कि चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, कुंठा जगत से मुक्त होना चाहते हैं। प्रभुपाद बड़ा अच्छा बताते हैं एक जगह पे, ये कहकर हम समाप्त करेंगे, यू नो व्हाई यशोदा इज मदर ऑफ कृष्णा, दिस फिलॉसफी नोबडी नोज। प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन बता रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं शी इज मदर ऑफ कृष्णा बिकॉज शी हैज परचेस्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। तो प्रभुपाद से पूछता है, एक भक्त पूछता है कि प्रभुपाद हमेशा हमें एंग्जाइटी रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये स्पिरिचुअल है मटेरियल है? प्रभुपाद कहते हैं दैट इज स्पिरिचुअल। फिर प्रभुपाद ये कहते हैं ऑफकोर्स यू कैन नॉट इमिटेट मदर यशोदा, ये नहीं कि हम भी माता यशोदा की तरह 24 घंटे सोचे कि उस स्तर पर हम चिंता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये हमारी अभी स्थिति नहीं है, लेकिन चिंता तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल चिंता शून्य होना भी ठीक नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई जप कर रहा है और उसको कोई चिंता नहीं है मंदिर में क्या हो रहा है, या कोई घर में है व्यक्ति, उसको कोई चिंता नहीं है कि घर के सदस्य भी जो है माला कर रहे हैं, या वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, या वो लोग भी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग भी प्रचार कार्य में लगे हैं, वो कोई चिंता नहीं है, मेरी 16 माला पूरी हो जाए बस। इसको कहते हैं स्वार्थ, कनिष्ठ की अवस्था है ना। न भक्तेषु अन्येषु सप्राकृत स्मृता, भक्त आए आने दो, अतिथि आए आने दो, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे तो अपनी माला करनी है। जिम्मेदारी नहीं लेना, माता यशोदा देखिए कितने चिंतित हैं, दूध उबल रहा है अंदर, ठीक है ना, स्तनपान करा रही है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण रो रहे थे, माता यशोदा जो है दही मथ रही थी, दामोदर लीला में यही तो है, और कृष्ण ने क्या किया, उखल को जोर से पकड़ लिया इस तरह से ताकि वो घुमा ना सके, है कि नहीं, तो उस रॉड को पकड़ लिया इस तरह से जोर से कृष्ण ने, तो माता यशोदा समझ गई इसको भूख लग रही है, तो माता यशोदा ने स्तनपान कराया, और बगल में ही कमरे में दूध उबल रहा था, तो दूध जब उबलने लगा तो दूध भी चिंता कर रहा है, दूध भी चेतन है, वहां पर सब कुछ चेतन है ना, वहां पर सब कुछ चेतन है, भगवान की लीला में सब चिंतन है, तो दूध भी चिंतन है, वो भी चिंता कर रहा है, अगर मैं उबलता जा रहा हूं उबलता जा रहा हूं कृष्ण की सेवा कैसे होगी। फिर जब माता यशोदा आई तो दूध और चिंता करने लगा, देखो मेरे कारण माता यशोदा को कृष्ण को छोड़ना पड़ा, देखिए तो वहां केवल चिंता का विषय केवल कृष्ण है, और कोई है ही नहीं विषय, वहां पर एक ही विषय है वहां पर कृष्ण, और माता यशोदा छोड़कर भाग गई कृष्ण को, कहां पर, बगल के कमरे में दूध को उतारने के लिए, उबलते हुए दूध को उतारने के लिए, क्यों, प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य में कभी कभी कृष्ण के लिए कृष्ण को छोड़ना पड़ता है, इसी कारण से प्रभुपाद फिर अपने बारे में बता रहे हैं कि कई भक्त वृंदावन में भजन कर रहे हैं और हम भी बड़े मग्न थे वृंदावन में सेवा कुंज में, हम भी भजन कर रहे थे, लेकिन फिर प्रचार के लिए इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमने भी वृंदावन का परित्याग किया कृष्ण के लिए। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रभुपाद ने कृष्ण के लिए कृष्ण को छोड़ा, यानी वृंदावन को छोड़ा, लेकिन ऐसा महाभागवत जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी वृंदावन का परित्याग नहीं करते हैं, क्योंकि वहां जाकर भी उन्हें नव वृंदावन का निर्माण किया प्रभुपाद ने, पूरे जगत में क्या बना दिया प्रभुपाद ने, वैकुंठ बना दिया, इसलिए प्रभुपाद ने कहा आवर टेम्पल्स आर नॉट इन न्यूयॉर्क बॉम्बे एंड कैलकटा, आवर टेम्पल्स आर इन बैकुंठा। तो बैकुंठा क्या है? ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, ये भावना है। इस प्रकार की भावना हम यहां पर भी ला सकते हैं, निरंतर श्रवण कीर्तन में लगे रहें, सेवा में लगे, प्रचार में लगे रहें, जिम्मेदारियों को उठाएं, जिम्मेदारियों से भागे नहीं, तो फिर क्या होगा? ये मंदिर, ये स्थान पूरा वैकुंठ बन जाएगा, ये वातावरण वैकुंठ बन जाएगा। वैकुंठ है, लेकिन अपनी भावना को भी हमें वैकुंठ बनाना है निरंतर सेवा करके। तो इस प्रकार हम श्रीमद् भागवत का पूरा लाभ उठाएं। श्रीमद् भागवत ऐसा अनमोल ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हम लोग इतना लाभ उठा सकते हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में जो श्रीमद् भागवत है उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है श्रीमद् भागवत में, कोई भी स्थान नहीं है। हर प्रकार का कैटव धर्म, वो सारा धर्म जिससे भौतिक तृष्णाएं बढ़ती हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया श्रीमद् भागवत से, और भागवत धर्म के द्वारा हम लोग भगवत प्रेम प्राप्त सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर ये बताया कि और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किम भाई शास्त्र किम भाई पर ईश्वर, और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इस शास्त्र के माध्यम से हम लोग जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सब अनमोल धन प्राप्त हुआ है, हम इसका लाभ उठाएं और समय बेकार ना करें, समय व्यर्थ ना गंवाएं, समय बहुत कम है, तत्परता से गुरु की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, और द्वेष से निंदा चुगली से बचें, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़े, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा की भावना पढ़े, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना पढ़े, तब क्या होगा, हमें वासुदेव कथा के प्रति रुचि जागृत होगी। जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तभी तो वैष्णवों की सेवा करके क्या होता है, वासुदेव कथा के प्रति रुचि जागृत होती है। अगर वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो नाम में रुचि नहीं जागृत होगी, तो जीव के प्रति दया क्या दिखाएं, ये बहुत आवश्यक। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, समय बहुत हो गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।